ओम शांति। संगम युग में परमात्मा और मुझ आत्मा का पाठ, इस विषय पर अपने विचार साझा करने आज हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी महेश भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप कर्नाटक हुबली की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। लौकिक पढ़ाई में आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है और बीएड आपने हिंदी विषय में किया है। 1974 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1975 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। आरंभ से ही बाबा ने आपको साहित्य विभाग की सेवा में बिजी रखा। इस समर्पित जीवन की जो यात्रा है आज तक की, इसमें आरंभ के 10 वर्ष आप हुबली में रहते कन्नड़ मैगजीन के संपादक रहे, फिर 1987 से 92 तक आप कुल 6 वर्ष आप दिल्ली में रहे और फिर 92 से 95 में शांतिवन ज्ञान अमृत मैगजीन बनाने की सेवा की। तो ऐसे 9 वर्ष आप सेवाएं देते रहे और जब 1995 में ज्ञान सरोवर एकेडमी का उद्घाटन हुआ, उसी वर्ष आप पांडव भवन में जगदीश भाई जी के ऑफिस में सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आज दिन तक बखूबी निभा रहे हैं। वैसे तो जगदीश भाई 2000 में अव्यक्त हुए, उनके जाने के पश्चात जो भी साहित्य का काम पीछे छोड़ के गए उसे रूप देने का काम आपने किया है। कुछ पुस्तकों का उल्लेख करना चाहूंगी। साकार मुरलियों का ईश्वरीय शब्दकोश, जो कि 3 भाग में छपा हुआ है, ज्ञान सुधा के 4 भाग, भाग्य विधाता के 2 भाग और इसके अतिरिक्त अव्यक्त मुरलियों में से कुछ संकलन किया है, जैसे अमृत वेले का संकलन, विधेयी अवस्था का संकलन, ऐसे काफी सारी पुस्तकें तैयार करने में आपका योगदान है। तो ऐसे प्रतिभावान विद्या के धनी आज हमारे बीच में हैं, तो हम आज सुनेंगे भाई जी से, आदरणीय महेश भाई जी।
ओम शांति। आप लोगों ने मधुबन का आनंद लिया 3 दिन। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, काशीवास करना है, सुना है ना, काशीवास करना है। जीवन में एक बार काशी में रहकर जीवन बिताना है। वैसे देखा जाए तो सच्ची सच्ची काशी कौन सी है? मधुबन है ना। कहते हैं काशी में परमात्मा का वास रहता है, तो निराकार बाप और साकार बाप का वास कहाँ रहा कई सालों तक? यही है ना। ब्रह्मा बाबा भी तपस्या की, साथ साथ शिव बाबा ने तपस्या सिखाई कैसे करना है। तो ऐसे स्थान पर आप 3 दिन के लिए ये सुवर्ण अवसर पाया, इसका लाभ तो जरूर उठाया होगा, उठाया है ना। कोई अपना समय वेस्ट नहीं किया ना, बातें करने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, मैं तो नहीं समझता। आप लोग अच्छी तरह पुरुषार्थ किया। इस ग्रुप में 1 से 5 साल के अंदर जो बाबा के बच्चे बने वो हाथ उठाए। अच्छा, काफी पुराने हैं। क्योंकि संगम युग में इस ईश्वरीय ज्ञान में परमात्मा का क्या रोल है और हमारा क्या रोल है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले जब तक हम अपना रास्ता तय नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। ज्ञान तो सबको मिला हुआ है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, एक साल से, दस साल से, बीस साल से, तीस साल से, चालीस पचास साल से, लेकिन हर आत्मा का रोल पार्ट अलग अलग होता है। अगर अपना पार्ट समझना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरा पिता परमात्मा का पार्ट क्या है, ये ड्रामा है क्या है। ड्रामा तो ये है ना, आत्मा परमात्मा और प्रकृति का खेल। ये प्रकृति क्या करना है, कैसा करना है, कब करना है, ये फिक्स है। उसी प्रकार परमात्मा भी पार्ट फिक्स है, कब आना है, आकर क्या करना है, कहां आना है और क्या सिखाना है और क्या करना भी है। वैसे है हम बच्चों का भी पार्ट फिक्स है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं तो खुशी होती है, बाबा मिल गया, तो धीरे धीरे बस मुरली सुनते हैं, जितना हो सके उतना अपने घर में पुरुषार्थ करते हैं, कई रोज दो दो बार क्लास करते हैं, कई एक बार करते हैं, कई हफ्ते में एक बार करते हैं, कोई महीने में एक बार करते हैं, यही हमारा पुरुषार्थ हो गया है ना। नहीं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है, सत्संग नहीं है, सुना और चल पड़ा। बाबा कहते हैं ये तो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, शिव बाबा परम शिक्षक है, हम उसका परम विद्यार्थी है, हे याद रहता है, ये तो याद रहता है, बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, लेकिन ये याद नहीं रहता हम सुप्रीम सन भी है, सुप्रीम स्टूडेंट भी है और सुप्रीम डिसाइपल भी है, याद रहता है नहीं, बहुत कम याद रहता है जहां तक मैं समझता हूं। हम ज्यादातर बच्चे बन के ही अपना अलौकिक जीवन बिताते हैं, बाप के संबंध में बहुत याद करते हैं, लेकिन बाबा का जो ये संगम युग में जो पार्ट है, बाबा कहते हैं 100 साल संगम युग है, हम बाबा के बच्चे या मनुष्य आत्मा है, ये 5000 वर्षों में जो पार्ट बजाते हैं वो सारा पार्ट शिव बाबा इस संगम युग में बजाता है। सुनो अगर ना, आज भी बाबा ने बोला मैं आता हूं, मैं आता हूं, ये मेरा जन्म स्थान है, भारत जन्मभूमि है, तो हमारा जन्मभूमि भारत है। मतलब बाबा कहते बच्चे किसको कहते हैं, जो बाप को फॉलो करते हैं, जो बाप धंधा करता है, जो बाप धारण करता है, जो बाप का जो उवाच या वचन जो होते हैं वो बच्चों के वचन, बच्चों का कर्म, बच्चों का धंधा होता है, लौकिक में भी ऐसे ही होता है ना। वैसे ही अगर हम क्या है, हमारा पार्ट है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें बाबा का पार्ट जानना पड़ेगा। बाबा का पार्ट क्या है, कौन बताएंगे? सबको पावन बनाना, और आत्मा को ज्ञान देना, और सबसे पहला पार्ट है बाबा का, तीन मुख्य पार्ट है, तीन मुख्य कर्तव्य है। यस, रास्ता दिखाना, साथ देना, नियम मर्यादाओं को सिखाना, ये तीन पार्ट है। लौकिक में भी मां बाप तो यही पार्ट बजाते हैं ना, अपने घर में बच्चों को पैदा करना, उनकी पालना करना, उनकी शिक्षा दीक्षा देना, उनको सही रास्ता दिखाना, ये बाबा का कर्तव्य। लेकिन बाबा एक कर्तव्य ये पार्ट कैसे बजाता है वो हमें देखना पड़ेगा, कैसे बजाता है। एक शरीर आधार लेकर वो अपना पार्ट बजाता है। तो हम बच्चे भी एक शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। देखिए हमारे अलौकिक जीवन एक बार थोड़ा पलट के देखना। जब से मैं बीके बना हूं, बाबा के बच्चा बच्ची बनी हूं, मैं इस शरीर का आधार लेके पार्ट बजा रहा हूं, बजा रही हूं? नहीं, हम भूल जाते हैं। जब आश्रम पर आते हैं या संगठन में आते हैं या मधुबन में आते हैं या सेंटर पर जाते हैं या ब्रह्मा भोजन पर मिलते हैं, सेवा में जाते हैं, तब अपने आप को बीके समझते हैं, अलौकिक परिवार वाले समझते हैं। जब लौकिक में चले जाते हैं, लौकिक जैसे बन जाते हैं, नहीं तो दोनों के बीच न लौकिक वाले बने रहते हैं न अलौकिक वाले बने रहते हैं, न शरीर समझते हैं न आत्मा समझते हैं, दोनों के बीच में हमारी स्थिति होती है। लेकिन बाबा हमेशा कैसे पाठ बजाता है, जब भी शरीर में आए तो अपने को इस शरीर से अलग ही समझता है। उसी प्रकार जब से हम ज्ञान में आए हैं, जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, तब से लेकर हम लोगों को यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर पार्ट बजा रही हूं। ये ज्ञान तो हम सबको पता है, इतने सालों से सुनते आए, लेकिन कहां तक हम प्रैक्टिकल में लाए? आत्मा बनकर देखना, आत्मा बनकर बोलना, आत्मा बनकर कर्म करना, बनकर समझकर भी नहीं, बनकर। लेकिन इसमें भी स्टेज है, पहले समझना पड़ता है, बाद में बनना पड़ता है। तो ये हमें देखना चाहिए, हम अभी तक कितना आत्मस्वरूप बने हैं। क्योंकि सबसे पहले बाबा ने यही पाठ पढ़ा है ना, हमारे दादिया दादा वगैरह जो 14 साल तक जो तपस्या की, उस समय क्या किया उन्होंने? परमात्मा का ज्ञान भी उतना स्पष्ट नहीं था, सृष्टि चक्र का भी स्पष्ट नहीं था। उन्होंने क्या किया? बैठकर अपने आप को आत्म अभिमानी, आत्म बनने का प्रैक्टिस किया। वही जो प्रैक्टिस उनको अंत तक मदद करती रही। अब किसने देखा, दादिया कितने बीमार थे, सालों साल तक बीमार रहे, लेकिन लगता नहीं तो वो लोग बीमार है, क्योंकि उनको ये पक्का था मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। बीमारी किसको आई है? शरीर को। मैं तो आत्मा, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप। उस नशे में, उस स्थिति में वो लोग रहे, इसलिए उनका बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को चलते चलते हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, खून निकलता है, कितने परेशान हो जाते हैं। हाहा वो हो, यही गीत गाना शुरू करते बिस्तर पर, नहीं ना? लेकिन बाबा कहते नहीं, जब आपको ये शरीर से मैं अलग हूं ये अनुभव रहता है, तब आपको दर्द होते हुए भी दर्द का महसूस नहीं होगा। ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आपने शायद सुना भी होगा साकार बाबा का उदाहरण, क्योंकि आप तो दीदी गोदावरी जी के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने बहुत साकार के अनुभव सुनाए होंगे। जब बाबा का एक बार ऑपरेशन कराना हुआ, तो ऑपरेशन कराने तो क्या करते हैं, अनस्थिया देते हैं ना, लेकिन कहते हैं बाबा ने ले लिया नहीं। जागृत अवस्था में उन्होंने साक्षी होकर देखते रहे, मतलब उस आत्मा में कितनी शक्ति होगी। तो ये किस आधार पर होता है? जितना जितना हम लोग विदेही अवस्था का अनुभव करते रहते हैं, अशरीरी बने रहते हैं, देही अभिमानी बने रहते हैं। आज भी बाबा ने बोला ना मुरली में, डिटैच हो जाओ, शरीर से डिटैच हो। ये मेन हमारा ज्ञान का फाउंडेशन है। जब तक आप लोग आत्मा नहीं बनेंगे तब तक आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जितने भी आदि रतन है, आपने किसी ने विश्वरत्न दादा को देखा था? किसने देखा हाथ उठाई? हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड थे, वो हमेशा यही कहते थे, सबसे पहला पाठ पक्का करो। जब तक अपने आप को आत्मा नहीं बनोगे तब तक आपकी प्रगति होगी नहीं। इसलिए इस ड्रामा में जब हम पाठ बजाना शुरू किया, जब हमें पता पड़ा मैं पात्र था, पाठधारी हूं, इस ड्रामा में हीरो एक्टर हूं। बाबा ने बोला ना, बच्चे आप हीरो एक्टर है। हीरो एक्टर और विलन, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? हीरो मींस हमेशा सकारात्मक कर्म करने वाला, विलन नकारात्मक, नेगेटिव, हमेशा दूसरों को दुख देने वाला। तो बाबा का पाठ क्या है? सबको सुख देना, है ना, सुख देना और दुख का निवारण करना, सुख करता दुख हरता, ये बाबा का पाठ। तो हम लोगों का क्या पाठ है? पहले अपने दुख भी दूर करना, खुद को सुखी बनाना, साथ साथ दूसरों के दुख दूर करके उनको सुखी बनाना। तो ये दुख दूर कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका साधन क्या है? ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। इस ज्ञान से हम अपने आप को देखना चाहिए, मुझे क्या क्या दुख है और दुख का कारण क्या है, और कारण ढूंढकर ज्ञान के आधार पर उनका निवारण करना है। जब मेरा दुख का कारण मुझे पता पड़ गया तो दूसरों के दुख का कारण भी आपको पता पड़ेगा, फिर ज्ञान के आधार से उस दुख का आप निवारण ढूंढेंगे और उसको मिटाने के लिए योग बल चाहिए। योग कैसा करना है ये बाबा ने हमें सिखाया। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मैं करण करावन हार हूं। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? करण करावन हार का अर्थ क्या है? कहते हैं भगवान को अकर्ता है, वो कर्म नहीं करता। बाबा कहता है मैं करण करावन हार हूं। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? सोचा होगा आप लोगों ने, तो कभी सोचा होगा बाबा ने मुरली में जब बताते हैं तो करण करावन हार क्या, या सब ऐसे ही हम रट रहे हैं भक्ति? हाँ, कराना हो गया करण, करण करावन हार। आज भी बाबा ने मुरली में बताया, देखो इस ब्रह्मा के तन में आकर मैं कितनी सर्विस करता हूं, बोला ना, याद है? और एक बात है, भगवान को कहते हैं त्रिकर्तव्य करने वाला, तीन कर्तव्य उसके हैं, कौन से? स्थापना, पालना और विनाश। तो बाबा कहते हैं मैं तो विनाश करता नहीं हूं। तो पहले पहले बाबा ने यह भी बोला, मैं स्थापना करता हूं, पालना करता हूं, विनाश करता हूं। बाद में बोल दे रहा मैं विनाश कराता हूं, करता नहीं हूं। जब कराता है तो स्थापना भी नहीं करता, फिर उसको भी कराता होगा, पालना भी नहीं करता होगा, क्या इसका अर्थ? तो फिर परमात्मा को मां बाप क्यों कहते हैं? मां बाप का कर्तव्य क्या है? जन्म देना और पालना देना। अगर वो पालना नहीं करता है तो फिर मां बाप क्यों कहे? सोचा इसके बारे में? और बाबा ने मुरली में भी ये भी कहा, बच्चे ये ब्रह्मा की आंखें है ना, ये क्या है? खिड़की है, खिड़की। मैं इन खिड़कियों से बच्चों को देखता हूं। और बाबा कहते, बच्चे ये बाबा यही अकेला खेलता है क्या बच्चों के साथ? मैं नहीं खेल सकता हूं। सुना है ये महावाक्य? इसलिए हमेशा इस ज्ञान को बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे इसको मंथन करते रहो, जैसे गाय उगाता है ना, ऐसे इस ज्ञान का बार 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 अगर आप सोचने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, आपको नई नई बातें मिलेंगी। वो बातें अगर आप ढूंढ लेते हैं तो इतना सुख मिलता है, बात मत पूछो। क्योंकि हमारा योग का आधार ईश्वरीय ज्ञान है। जब तक आपको आपके पास ज्ञान नहीं है, आप योग नहीं कर सकते। हमारा अल्टीमेट जो है, मुख्य जो सब्जेक्ट है, योग है। लेकिन योग करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। जितना जितना आप ज्ञानी होंगे, उतना उतना बड़े योगी बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे महिमा में सबसे पहले क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर कहते हैं। ठीक है, बाबा ज्ञान देता है अपने बारे में और हमारे बारे में और सृष्टि के बारे में। फिर बाबा कहते हैं, मैं प्रेम का सागर हूं। तो प्रेम का सागर, भाई ये व्यक्ति प्रेममयी है, प्रेम स्वरूप है, आप कैसे पता पड़ता है? कहने से पता पड़ता है? मैं कहूंगा भाई मैं बहुत प्यारा हूं, कहने से आप विश्वास करेंगे? कैसे जानेंगे? व्यवहार से। व्यवहार करना है तो कैसे करना? शरीर द्वारा ही करेंगे ना। तो जब तक बाबा शरीर में नहीं आता, तब तक उसका प्यार क्या है हमें नहीं पता। और वो अपने प्यार को इस ब्रह्मा बाबा के शरीर से बच्चों को दिया है और देता भी है। तो बाबा ने कई बार बोलते हैं, मैं ज्ञान सिखाता हूं और योग सिखाता हूं। योग भी कैसे करना है बाबा ये सिखाता है। मुरलियों में आपने कई बार सुना होगा, मुझे ऐसे ऐसे याद करो, मैं यहां सामने बैठा हूं फिर भी परंदाम में याद करो, परंदाम में होते हुए भी सामने याद करो। याद करने की विधि बाबा खुद याद करके, वो अपने आप योग भी करता है, ऐसे करते हैं नहीं, दूसरों का योग नहीं करता जैसे हम परमात्मा का योग करते हैं। वो अपने स्वरूप, जैसा आत्म स्वरूप, जब हम, मैं अपने आप को बताता हूं ना भाई, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, ऐसे बाबा हमें से कहता है, बच्चे मैं आत्मा परमात्मा हूं, प्रेम का सागर हूं। तुम अपने आप को क्या समझो? प्रेम स्वरूप समझो। तो इस प्रकार हर कर्म, जैसा खाना कैसा है, पीना कैसा है, बोलना कैसा है, देखना कैसा है, चलना कैसा है, ये सब बातों को शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ के बच्चों को सिखाया। ये तो स्थूल हो गया। सूक्ष्म बाबा पिता बनके, माता बनके, शिक्षक बनके, सदगुरु बनके, पति बनके, दोस्त बनके, बच्चा बनके, ये सारा अनुभव हमें कराता है केवल संगम युग में। ये बाबा का पार्ट है। बच्चों के साथ पिता बनके रहता है, खुद बच्चा बनकर माता पिताओं के साथ अपना पार्ट बजाता है, टीचर बन के हमें ये त्रिकाल ज्ञान सिखाता है। लेकिन लेकिन इसका अनुभव हमें करना चाहिए, यही संगमयुग की विशेषता है। क्योंकि बाबा ने बोला है। बाबा को ये भी बोलते हैं, ये भी एक महिमा है, वो अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ज्ञान देता है। ये भी सुना होगा ना, बाबा कई बार बोल देता है मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ ज्ञान देता हूं। कैसे तुम बच्चे सुखी बने, पवित्र बने, स्वराज्य अधिकारी बने, इसका मैं नॉलेज देता हूं, रास्ता दिखाता हूं, करना तुम लोगों को है। मैं किसी को सुख नहीं देता, सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता। सुख को दुख किसके आधार पर मिलते हैं? अपने अपने कर्मों के आधार। ये भी एक पहलू है, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है, बाबा खुद करता भी है। कब करता है? बाबा ये भी कहते हैं, जो करता है उसको फल मिलता है। लेकिन बाबा करता है तो उसको फल मिलता होगा ना, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने अपने शरीर में बैठ के कर्म करते, इसके फल मिलता है। बाबा का अपना शरीर नहीं, दूसरों के शरीर में आकर टेम्पररी वो काम करता है, चला जाए, इसलिए कर्म का फल उसको नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते मैं निर्लेप हूं। और इसके अलावा हमारा शरीर कई है ना, हर एक शरीर के साथ हमारा संबंध है। कुछ अच्छा भी किया उस शरीर द्वारा, कुछ विकर्म भी किया है। अच्छा का फल वो भी आता है और बुरा कर्म का फल वो भी आता है। इस शरीर से जो करते हैं इसके साथ भी हम अनुभव करते हैं, फिर इसको छोड़ने के बाद उस नया शरीर लेते हैं, उसके साथ भी जो पिछले वाला हम पूंजी लेके आते हैं उसका चुकतु करना पड़ता है। लेकिन बाबा के ये नहीं, बाबा एक ही बार आता है और एक ही शरीर में आता है, इसलिए वो कर्म से अतीत है, उसका कर्म फल उसको नहीं मिलता। तो बाबा यही कहता है, बच्चे तुम बच्चे भी इस संगम युग पर शरीर का आधार लेकर कर्म करना है। शरीर अपना समझकर नहीं, ये मेरा शरीर है, नहीं, ये बाबा का दिया हुआ शरीर है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस भावना से हम जो कर्म करते हैं उसका फल अलग होता है। बाबा ने कई बार बोला है, भावना कभी भाड़ा मिलता है ना। हम जिस भावना से, जिस भाव से कर्म करते हैं, जिस भाव से हम बोलते हैं और जिस भाव से संकल्प करते हैं, उसके अनुसार फल मिलता है उस आत्मा को। देखिए बाबा कर्म करता है, अच्छा बाबा बच्चों को खिलाता है, समझ लो खिलाता है। जब आप स्टेज पर जाते हैं, बाबा आपको टोली खिलाता है मुंह में, अनुभव करना। ये जरूरी नहीं हो जाके हम ले, नहीं, ये ज्ञान अनुभव ज्ञान है, सूक्ष्म है। बाबा का ज्ञान शरीर को नहीं, स्थूल नहीं, आत्मा के लिए है और सूक्ष्म है, हर बात सूक्ष्म है। सूक्ष्म अर्थात मानसिक। आप इसको जितना जितना मनसा अनुभव करते हैं उसका फल, मन का फल या सूक्ष्म फल बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत काल का होता है। आपने सुना होगा भक्ति मार्ग में भी, स्थूल भक्ति से मनसा भक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है, मानसिक पूजा जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार यहां जो ईश्वरीय ज्ञान में सूक्ष्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आम तौर पर ये ज्ञान को स्थूल रूप में लेते हैं, शारीरिक रूप से लेते हैं, लौकिक रूप में लेते हैं। अगर बाबा कुछ देता है तो कहते हैं, अरे बाबा कहते हैं मैं मदद हमेशा बच्चों की मदद करता हूं, तो हम क्या समझते हैं? बाबा हमारा बीमारी ठीक करेगा, या हमारा कोई नुकसान हुआ तो वो ठीक करेगा, या हमारे रिश्तेदारों को ज्ञान में लाएगा, या हमें ये लॉटरी में टिकट लिया उसको लॉटरी लगवाएगा, ये सोचते हैं। नहीं, हमारा लौकिक से कोई संबंध नहीं बाबा का। हाँ एक बात जरूर है, अगर आप निमित्त ट्रस्टी होकर बाबा के वफादार बच्चे बनकर अगर लौकिक में भी काम करोगे तो बाबा वहां मदद करता है। कैसे? उस लौकिक व्यवहार में भी बाबा को बीच में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भक्ति मार्ग में अथवा लौकिक में हम क्या करते हैं, अगर किसी को हम उधार देते हैं, कैसे देते हैं? मेरा पास पैसा है इसको मैं देता हूं, वो संबंध क्या हो गया, वो व्यवहार किसके बीच में हो गया, आप और उसके बीच में। अगर आप किसी को मदद करते हैं तो उस व्यक्ति को नहीं देना, बीच में बाबा को रखना, बाबा के द्वारा उसको दिलाना। तो बीच में दलाल कौन हो गया? बाबा। जिम्मेदार कौन हो गया? बाबा। वैसे ही जो भी हम कर्म करते हैं, लौकिक में हो अलौकिक में हो, बाबा कहते हैं बीच में मुझे रखो। इसके लिए विधान क्या है, हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, बहने क्या बोलती है, कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करो, एक मिनट बाबा को याद करो, या बाबा के कमरे में जाके बाबा के बता के जाओ, बाबा मैं यहां जा रहा हूं, यहां कर रहा हूं। ये पाठ हो गया। अगर आप अपने आप अपनी मर्जी से किया, ये हमारा संगमी की पार्ट ने कली की पार्ट हो गया, अपना समझ के किया, तो आप ही जिम्मेदार है। इसलिए संगम युग में बाबा जिस प्रकार अपने आप को निमित्त समझ के बच्चों की सेवा करता है, वैसे ही हम लोग भी इस शरीर में ट्रस्टी बनकर, ये देह मेरा नहीं है, बाबा का दिया हुआ है संगम युग में सेवा करने के लिए। तो इस भाव से हम इस शरीर द्वारा कर्म करते हैं, बात करते हैं, संकल्प करते हैं, यह हो गया पाठ। इसलिए इस संगमयुग पाठ में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्मृति, दूसरा है संकल्प, तीसरा है कर्म। ये तीनों बातों को याद रख के जब हम ईश्वरीय ज्ञान में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा पाठ श्रेष्ठ, न्यारा और अलौकिक हो जाता है। बाबा हर बार बोलते बच्चों को, बच्चे जब भी आप खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो क्या करो, भोग जरूर लगाओ। क्यों कहते हैं, बाबा खाना खाता है, भोग स्वीकार करता है, बाबा वासना लेता है, लेता है, तो फिर वासना लेना भी भोग स्वीकार करना हो गया ना, खाना खाना हो गया, क्योंकि भोजन तो शरीर का हो गया, वासना आत्मा का हो गया। अच्छी बुरी जो भी स्वाद का जो स्मेल है वो आत्मा लेती है, और जो टेस्ट है शरीर द्वारा आत्मा लेती है, लेकिन टेस्ट तो करता ये तो अन्न तो शरीर को हो गया ना, तो फिर वासना लिया माना वो तो स्वीकार हो गया, वो भी तो भोगी हो गया। इसमें राज, बाबा वासना भी नहीं लेता, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए बच्चे हर बात में मुझे याद करके तुम कर्म करो, ये भावना जागृत है। जैसे नहीं वो लौकिक में माँ समझ लो, एक माँ को एक बेटा एक बेटी बच्ची रहते हैं, बेटी बड़ी होती है बच्चा छोटा होता है, तो वो क्या करता है, बहन को बहुत तंग करता रहता है, ठीक है, तो कभी कभी वो लात भी मार देता है अपनी बड़ी बहन को, तो माँ बोलते क्या बोलती है, दीदी को लात नहीं मारना, मारो तो क्या होगा, अगले जन्म में बिल्ली बन जाओगे, है ना, ये कहते हैं गांव में कहते हैं। इसका अर्थ क्यों, क्या बोलते हैं, लेकिन उसको तुमको बिल्ली नहीं बनना, इसलिए नहीं बनना है तो दीदी को लात नहीं मारना या थप्पड़ नहीं मारना या कुछ भी, मतलब उसको तंग नहीं करना, ये कहने का भाव। उसी प्रकार बाबा कहते बच्चे कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ, सबसे पहले मुझे अर्पण करो। जब कोई भी चीज अर्पण हो जाती है वो शुद्ध हो जाता है, वहां अपनापन ममत्व नहीं रहता, वो क्या होता है, प्रसाद बन जाता है। आपने भक्ति मार्ग में सुना होगा दो तरह के, वहां भी होते दो तरह के शरीर, एक है मांस का स्थूल शरीर, भोगी शरीर बोलते हैं, दूसरा है प्रसादमय काया, अन्न वही है लेकिन ये भगवान का प्रसाद समझ के आप खाएंगे, वो शरीर क्या होता है, भोगी काय नहीं होता, प्रसादमय काय होता है, लेकिन वास्तव में प्रसादमय काया कब बनती है? संगम पर, क्योंकि सच्चे सच्चे भोग यहां संगम के ऊपर हम बाबा को लगाते हैं। बाबा को खिला के, बाबा को सामने रख के, बाबा से हम खाते हैं। अब याद रखिए, भगवान को तो भक्ति मार्ग में बहुत समय खिलाते आए, उसके नाम से मूर्ति को हो या कृष्ण को, राम को, किसी को भी हम खिलाते आए, लेकिन सिर्फ एक संगम युग में शिव बाबा बच्चों को खिलाता है। ये अनुभव हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा पार्ट टोटली संगम युग में बदल जाना चाहिए। लौकिक का कोई भी निशान, लक्षण, रीत रिवाज नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको परिवर्तन करना। इसलिए संगम युग में परिवर्तन कला बहुत जरूरी है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ परिवर्तन करना है। बाबा बताते हैं ना, एक मिसाल सुनाते हैं बच्चों का, प्यार, सिर्फ अपने प्रेम को बदल दो। जैसे बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा होता है उसका प्यार किसके साथ रहता है? माँ बाप के पास। जब बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, दोस्तों के साथ। जब जवान हो गया, शादी हो गई, बीबी के साथ। फिर एक बच्चा हो गया, उसके साथ। ये परिवर्तनशील है ना। उसी प्रकार बाबा कहते, तुम्हारा जो प्यार है ना, दिल का प्यार, उसको परिवर्तन कर दो। वो प्यार मेरे ऊपर रखो, प्यार मुझे करो। एक हंसी की बात है, कभी कभी बाबा बोलता है, बच्चे किसी को भी प्यार नहीं करो, बोलता है ना, सिर्फ मुझे है, मुझे प्यार करो, मेरे से ही प्यार रखो, मेरे से ही दिल लगाओ, और किसी से दिल नहीं लगाओ। क्या इसका अर्थ है? अरे भाई, संसार में है, परिवार में है, तो प्यार नहीं तो कैसे चलेगा? क्या क्या बताएंगे माताएं? बाबा कहते, किसी से भी दिल मत लगाओ, किसी को भी प्यार नहीं करो, सिर्फ मुझे प्यार करो। तो बच्चों को कैसे पालन करें? इसमें थोड़ा सूक्ष्मता है। बाबा कहते हैं, किसी देहदारी को प्यार मत करो, उनको प्यार दो, प्यार सिर्फ मेरे से करो। प्यार देने में और प्यार करने में अंतर है, कौन बताएंगे? प्यार देने में एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उसके बदले में आप कुछ अपेक्षा नहीं रखते, आप देते रहते, देते रहते, देते रहते। प्यार करना माना उनसे लेना, कुछ अपेक्षा रखना, सुख का हो, शांति का हो, या सुविधा का हो। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ मेरे से प्यार करो, सबको प्यार दो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार, उनको देते रहो प्यार, अलौकिक प्यार, निस्वार्थ प्यार देते रहो। तो देने से क्या होता है? देने से तो मिल ही जाता है, लेकिन देने वाला बड़ा बन जाता है, क्योंकि आप है पूर्वज और पूज्य। आप किसी से मांगना नहीं है, चाहना नहीं है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे आप माताएं ये सारे सोने चांदी के आभूषण मत पहना करो, दुनिया वाले बहुत पहनते हैं ना, उनको देख के ये इच्छा नहीं रखो भी हम भी पहने। क्यों? हम लोगों के सोना चांदी के मोह नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? और एक कारण बताओ भाई लोग, बताओ। इसमें राज है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे आजकल के जो करोड़पति है ना, वो आपके सामने कौन है? भिखारी है। क्यों? जब आप स्वर्ग में थे, सतयुग में थे, कितने अमीर थे, हाँ? आपके मकान में हीरे मोती, सोना चांदी जड़ा हुआ था। तो आप लोगों ने जो सुख वैभव भोग करके छोड़ा है ना, वो बचा कुचा ये लोग है, उसका स्वाद चक्र है। इसलिए कलियुग की कोई भी चीज पर आपकी दिल जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, एकदम है ना, ये भीख जैसा है, हम खा पी के जो फेंके रहते हैं ना, वो ये लोग खा रहे हैं। इसलिए इन लोगों को देख के ये अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना। उनके पास बहुत बढ़िया कार आई बगल वालों पे, या उन्होंने नेकलेस ले आया, या उन्होंने वो लाया ये लाया, हमारे पास नहीं है। आपके पास ये इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने इतने सारा जन्मों से खा के सारा खत्म कर दिया। जो आप खाकर जो छोड़ा हुआ है वो ये लोग खा रहे, इसलिए उनके साथ अपने को कभी भी कंपेयर नहीं करना। ये है हमारी स्मृति। इसलिए स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम युग में जो बाबा ने स्मृति दिया है ना, उन सारे स्मृतियों को प्रैक्टिकल आप लाओ। जैसा बाबा कहते हैं, आप जहान के नूर हो। नूर कहाँ है? आंखों में ना, रोशनी बोलते हैं। अगर वो रोशनी नहीं है तो आंख होते हुए भी अंधा। उसी प्रकार आप अगर नहीं है तो दुनिया नहीं है। आप सारे दुनिया के रोशनी हो, आपके आधार पर ये दुनिया चल रही है। आप चढ़े दुनिया चढ़ेगी, आप गिरे दुनिया गिरेगी, आप हंसेंगे तो दुनिया हंसेगी, आप रोएंगे तो दुनिया। इतनी जिम्मेदारी, इतना पाठ हमारा बड़ा है। इसलिए बाबा के हर शब्द जो है ना, आप उसको एनालिसिस करते जाओ, उसका विश्लेषण करते जाओ। मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, मुरली को ऐसे सुनो ये मेरे लिए, कहते ना अक्षय पात्र, आपने सुना है नाम, जो द्रौपदी के पास एक ये था, सिर्फ एक दाना बचा हुआ तो वो सबका साधु संतों का पेट भर गया। ऐसा है ये ज्ञान के एक पॉइंट ऐसा है, तो कई आत्माओं की भूख प्यास दुख मिटा देते। इसलिए ज्ञान को बहुत महत्व दो और उसका अध्ययन करो। जैसे जैसे आप ज्ञान का अध्ययन करते जाते हैं तो आप नए बाबा के महावाक्यों का पता पड़ता है। फिर जैसे जैसे आप उनको बाबा के साथ अनुभव करते जाओ, क्योंकि संगम युग में बाबा को साथ रखना बहुत बड़ा भाग्य है और कला है। क्योंकि सिर्फ संगम युग में बाबा हमारे साथ रहने के लिए ऑफर किया हुआ है। बाबा ने मुरली में ये भी कहा, बच्चे मुझे यूज करना सीखो, यूज करो। ये पार्ट है बाबा का, पार्ट संगम युग में ये है कि बच्चों के साथ रहने का, बच्चों का साथ देने का। तो हमारा पार्ट है बाबा को साथ रखकर हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल करने का। जैसा आप दादियों को देखा होगा, दादी लोग जब भी अपना अनुभव सुनाते हैं तो आपने देखा उनके आंखों को, आंखों में चमक आती है, कई बार उनके चेहरे से ना रोशनी निकलने लगते, इतने मगन हो के वो लोग बोलते हैं। क्यों? उन्होंने बाबा के साथ अनुभव किया। उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं, साकार के साथ का अनुभव हम भी कर सकते हैं। कैसे? बाबा ने कई बार बोला, अवेक बाप दादा ने बोला है, ये मत समझा करो सिर्फ साकार बाबा को, पुराणों ने देखा हमने नहीं देखा, लेकिन उस साकार बाबा को हम भी अपने साथ वही अनुभव उन्होंने जो किया है वो कर सकते हैं। कैसे करना? फोटो में हम देखते हैं ना, जैसे लच्छू दादी बाबा को थाली में भोजन लगा के भोजन देती थी, देती है ना, तो हम भी नहीं दे सकते। अनुभव करो। अनुभव करने में क्या, अनुभव तो आत्मा को आनंद मिलता है ना, शरीर को नहीं, स्थूल को नहीं, सूक्ष्म को। जब भी आपको लगता है मैं बाबा के साथ बात करनी है, बाबा के साथ घूमना है, तो अगर जाओ आप कल गए तो घूमने गए थे ना शाम को, तो उस समय क्या अनुभव करो, बाबा पहाड़ जाते हैं तो ये अनुभव करना चाहिए था, बाबा हमारे साथ लेके जा रहे हैं, बाबा के हाथ पकड़ के चढ़ो, वही अनुभव आपको होगा। एक बार एक माता आई थी हरियाणा की यहां, उसके टांगों में दर्द था, चल नहीं पाती थी, लेकिन उसको बहुत बड़ी इच्छा थी मैं बाबा की पहाड़ी जाऊं। सब ने मना किया उसको, मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं मुझे पता नहीं दोबारा मैं आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, मैं चढ़ूंगी जरूर। बहुत मुश्किल से किसी के साथ लेके चढ़ी, चढ़ती रही चढ़ती रही चढ़ती रही, एक लास्ट में एक टांग उठा समय जिस टांग में दर्द था ना, एकदम खट आवाज आई, सबने समझा ये टूट गई टांग, लेकिन वो ठीक हो गए टांग। ऊपर गई नीचे आए, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, कमाल ये नहीं, ये भावना के ऊपर है। संगम युग में हम जो संकल्प करते हैं वो सारा सिद्ध होता है, लेकिन संकल्प कौन सा, भले आप अच्छे संकल्प भी करो और बुरा संकल्प भी करो, बुरा संकल्प भी सिद्ध होता है, लेकिन बुरा संकल्प हम अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, है ना, उसका फल हमें मिलता है यहां पे। अगर किसी के प्रति आप बुरा संकल्प किया, श्राप दिया, वो श्राप उसको नहीं लगता, जिसने किया उसी को लगता है। अगर आप श्रेष्ठ संकल्प किया अपने बारे में या दूसरों के बारे में, तो उसका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण। ये संगम के कई ऐसे राज है, तो हम ज्ञान से और अनुभव से कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे किसी भी हालत में, हर हालत में, लाभ हो नुकसान हो, श्रेष्ठ संकल्प ही करना चाहिए, ये हमारा पार्ट है। मैं बोल रहा था ना, एक स्मृति संकल्प, संगम में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। आप जो भी संकल्प करेंगे सिद्ध होगा, लेकिन हमें करना क्या है, बाबा बोलता है, लेकिन आपको करना यही करना है, कुछ ये होता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्टेड है एरिया, ये ही करना है, ये नहीं करना, आपको ये करना है। क्या करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना, शुभ संकल्प करना, पवित्र संकल्प करना। और दूसरा है कर्म, तीसरा कर्म कैसा, कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम युग में कर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि पूरे कल्प का जो प्राप्ति का आधार वर्तमान समय के हमारा कर्म है, स्मृति संकल्प और कर्म। मैं संकल्प के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हम जब बचपन छोटे थे तब हमारे टीचर सुनाया करते थे, दो दोस्त थे, वो दोस्त घूमने गए, देश घूमने गए, तो चलते 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 गए तो एकदम मैदान इलाके में चले गए, ना ये पेड़ है ना पानी है कुछ भी नहीं है, बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, क्या करे भाई, कम से कम यहाँ ये कोई पेड़ मिल गया तो क्या करे, पानी की नहीं मिल गया तो अच्छा है। तो वो जाके क्या किया, उसने एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे बैठे दोनों, वो बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत ठंडी ठंडी हवा आने लगी, छाया, आहा कितनी अच्छी बात है भाई, इतना ठंडा है, अगर पीने के लिए अगर कुछ ठंडा पानी मिल जाए, तो फट से वहां एक मटका दिखाई पड़ा ठंडा पानी का, पी लिया, बड़े खुश हो गए, कहते भूख लगी अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो बढ़िया भोजन मिल गया, अरे भोजन मिल गया खुश हो गया, आराम लेने तो कोई अगर डांस करने वाले आए तो नाचने डांसर उधर तो दो आए अप्सरा डांस करने लगे, तो उनको डाउट होने लगा ये क्या हो रहा है, तो हम जो भी कहते वो सारा सामने आ रहा है, यहां तो भूत प्रेत तो नहीं है, भूत प्रेत आ गए, फिर घबरा गए, ऐसा तो नहीं ये हमें खा लेंगे, क्यों, वो जहां बैठे थे वो पेड़ कल्पवृक्ष था, अब जो भी इच्छा करेंगे वो सिद्ध हो जाते। वैसे ये संगम युग जो है एक कल्प वृक्ष है, संगम युग में आप जो भी संकल्प करेंगे ये सिद्ध होगा, इसलिए सोच समझ के संकल्प करना, वो संकल्प भी क्या करना है, श्रेष्ठ संकल्प ही करना, और कर्म, कर्म भी श्रेष्ठ करना है, क्योंकि दुनिया में तीन तरह के कर्म करते हैं। वो कहते हैं एक अच्छाई तरफ का होना धर्म के, दूसरा अधर्म, तीसरा न्यूट्रल, बोलते हैं न्यूट्रल, तटस्थ। लेकिन संगम में न्यूट्रल है ही नहीं, या अच्छा करो या बुरा करो, क्योंकि बाबा ने हमें सिर्फ अच्छा करने के लिए बोला। अगर समझो आप कोई एक बात, कोई व्यक्ति बहुत गलत काम कर रहा है, तो आपको देख के आपको क्या लगेगा, ये करता इसको दूर रहूं, दूर रहे तो क्या हो गया, हम समझते भाई उसके तरफ में नहीं लेना, उसके खिलाफ नहीं रहना, हम तटस्थ रहेंगे। नहीं, आप ये तटस्थ रहना भी पाप है, क्योंकि व्यर्थ कर्म है ना वो। हमें करना है संगम में श्रेष्ठ कर्म ही करना है। अगर श्रेष्ठ कर्म करना है क्या करना है, उस आत्मा के प्रति साक्ष्य होकर देखना, माना तटस्थ नहीं, श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना, वो सुधर जाए, वो अच्छा हो जाए, ये इससे उस आत्मा को भी फायदा, हमें भी फायदा। इस तरह ये संगम युग का पार्ट को आप रोज जो मुरली सुनते हैं ना, अब मुरली में अभी अध्ययन करना शुरू करो आप। बाबा रोज बताते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, इस तरह ये पॉइंट्स आप निकाल के रखो, उसके बारे में सोचो और आनंद लेते रहो। ओम शांति।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु कितना प्यारा,
मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु, माला मबदा माला त्रिकरी मापा
रोशनी ही रोशनी आती अपना भवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, ना है।